अध्याय चार, संस्कृत शिक्षण के कतिपय सामान्य सिद्धांत। आज मनोविज्ञान की दिनानुदिन उन्नति हो रही है। मनोविज्ञान के क्षेत्र में भाषा से संबद्ध अनेक अनुसंधान हो रहे हैं। इस अनुसंधानों से प्राप्त कुछ निष्कर्ष अव्याप्ति दोष से युक्त हैं, किंतु कुछ निष्कर्ष उत्तम हैं और संस्कृत शिक्षण में भी उनका उपयोग किया जा सकता है। इस अध्याय में कुछ ऐसे सिद्धांतों का उल्लेख मिलेगा। इसके साथ ही इस अध्याय में सामान्य सिद्धांतों की चर्चा करते समय इस तथ्य को बुलाया नहीं जाएगा कि भाषा के दो पक्ष होते हैं, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक पक्ष का संबंध ध्वनि से है और मानसिक पक्ष का संबंध विचारों से। भाषा के दोनों पक्षों पर सदा दृष्टि रखनी है। भाषा समाज और द्वारा अर्जित होती है और इस अर्जित संपत्ति की रक्षा का भार भी समाज पर ही होता है। भाषा को एक व्यवहारिक प्रक्रिया कहा गया है जो विभिन्न रूप धारण करती हुई सतत प्रवाहमान रहती है। किसी भी भाषा के ज्ञान से तत्कालीन समाज का भौतिक तथा आर्थिक ज्ञान भी प्राप्त होता है। फिर संस्कृत में तो इस प्रकार के ज्ञान का बाहुल्य है। संस्कृत भाषा की कथा भारतीय संस्कृति के विकास की कथा है। इस भाषा पर अधिकार प्राप्त करने में निम्नलिखित सिद्धांत सहायक सिद्ध होंगे। शीर्षक, स्वाभाविकता का सिद्धांत। भाषा एक जन्मजात प्रवृत्ति है। भाषा सीखने की प्रवृत्ति स्वाभाविक होती है। बच्चा भाषा सीखने का इच्छुक होता है। शिशुकाल में ही यदि संस्कृत भाषा का शुद्ध ज्ञान देने का प्रयास किया जाए तो अधिक अच्छा रहेगा। इस काल में बालक किसी भी भाषा को शीघ्र सीख सकता है। संस्कृत भाषा का शिक्षण देने के लिए स्कूल में इस प्रकार का वातावरण उपस्थित किया जाए जिससे छात्र अनायास ही संस्कृत भाषा के प्रति आकृष्ट हो सकें। संस्कृत शिक्षण के लिए स्कूल में इन बातों को अपनाया जा सकता है। एक, अध्यापकों को चाहिए कि वे संस्कृत के श्लोकों का छात्रों से गायन कराएं। द्वितीय, अध्यापकों को स्वयं संस्कृत श्लोकों का सस्वर पाठ करने में कुशल होना चाहिए। तृतीय, कक्षा के बाहर या अंदर अध्यापक यथासंभव सरल संस्कृत में ही वार्तालाप करें। चतुर्थ, छात्रों को भी सरल संस्कृत में बोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। क्रियाशीलन और अभ्यास का सिद्धांत। भाषा एक कला है, विज्ञान नहीं। प्रत्येक कला में अभ्यास की आवश्यकता होती है। संस्कृत भाषा में भी अभ्यास तथा पुनरावृत्ति की आवश्यकता होती है। संस्कृत भाषा की शिक्षा देने के लिए बोलने, पढ़ने तथा लिखने में अभ्यास कराया जाना आवश्यक है। संस्कृत शिक्षण के लिए निम्नलिखित सिद्धांत अपनाए जा सकते हैं। प्रथम, छात्रों को कठिन ध्वनियों का शुद्ध उच्चारण सहित वाचन करने का अभ्यास कराना। द्वितीय, पाठगत शब्दों एवं कठिन वाक्यों के उच्चारण का अभ्यास सिखाना। तृतीय, संस्कृत की उक्तियों एवं मुहावरों का ज्ञान कराना। चतुर्थ, संस्कृत व्याकरण संबंधी अशुद्धियों को शुद्ध करना। पंचम, अक्षर विन्यास संबंधी अशुद्धियों को शुद्ध करने का अभ्यास कराना। षष्ठ, संस्कृत के पद्य खंडों एवं गद्य खंडों को शुद्ध उच्चारण सहित पढ़ने का अभ्यास कराना। रुचि का सिद्धांत। संस्कृत भाषा का शिक्षण देने के लिए रुचि के सिद्धांत को भी अपनाया जा सकता है। जब तक छात्र में संस्कृत भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं होगी तब तक वह संस्कृत भाषा को सीख नहीं सकता। रुचि उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों को अपनाया जा सकता है। प्रथम, संस्कृत का पाठ पढ़ाने से पहले छात्रों से पूर्व ज्ञान संबंधी प्रश्न पूछना। द्वितीय, दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग करना। तृतीय, पूर्व ज्ञान संबंधी प्रश्नों द्वारा उसमें रुचि उत्पन्न करना। संस्कृत के कठिन पाठों की सरल भूमिका प्रस्तुत करना। चतुर्थ, संस्कृत के श्लोकों का गायन कराना। पंचम, नीरस विषयों को सरस बनाना भी रुचि के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। षष्ठ, खेल विधि को भी अपनाया जा सकता है। सप्तम, चित्रों इत्यादि की सहायता से संस्कृत कहानियों का ज्ञान कराना। अष्टम, छात्रों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करने से भी उनमें संस्कृत भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है। नवम, पुरस्कार तथा दंड को प्रोत्साहन देने से भी संस्कृत भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है। दसम, संस्कृत गद्यों एवं पद्यों की सरल भाषा में व्याख्या करना। स्वतंत्रता एवं वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत। स्वतंत्रता एवं वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत भाषा पर अधिकार करने के लिए कक्षा, विद्यालय एवं परिवार में घुटनपूर्ण वातावरण नहीं होना चाहिए। स्वतंत्र वातावरण में छात्र की जिज्ञासा तीव्र हो जाती है और वह आत्म प्रकाशन की ओर उन्मुख होता है। वार्तालाप, चर्चा, पत्र व्यवहार, वाद विवाद आदि के माध्यम से बालक आत्म प्रकाशन करता है और इसी प्रकार वह भाषा पर अधिकार करने की ओर उन्मुख होता है। स्वतंत्र वातावरण में भी वह संस्कृत के टूटे फूटे वाक्य बोलना प्रारंभ करता है। स्वतंत्र वातावरण में भी वैयक्तिक भिन्नता पर भी ध्यान दिया जा सकता है। मनोविज्ञान हमें बताता है कि शिशुओं में योग्यता, रुचि, प्रवृत्ति, अभिवृत्ति, शारीरिक क्षमता, संवेगात्मकता आदि के आधार पर भिन्नता होती है। कक्षा में जब अध्यापक पढ़ाता है तो वह सभी बालकों को समान समझकर शिक्षा देता है, किंतु भाषा एक कौशल है और इस पर अधिकार करना बालक की व्यक्तिगत क्षमता के अनुसार पर संभव है। कोई बालक भाषा पर शीघ्र अधिकार कर लेता है तो कोई बहुत विलंब में भाषा सीख पाता है। भाषा योग्यता सब में बराबर नहीं होती। भाषा की एक सूझ, भाषा बारीकी की समझ, भाषा अभ्यास की उत्कंठा एवं भाषा प्रकृति की जिज्ञासा सब में समान नहीं होती। अतः अध्यापक को वैयक्तिक भिन्नता के सिद्धांत को ध्यान में रखकर शिक्षा देनी चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नता की ओर ध्यान तब ठीक प्रकार से दिया जा सकता है कि जबकि बालक को भाषा संबंधी अभ्यास के लिए स्वतंत्र वातावरण प्रदान किया जाए। कक्षा के अंदर तथा घर पर यदि दमनपूर्ण वातावरण रहता है तो भाषा ज्ञान के अर्जन में बाधा उपस्थित होती है। प्रयत्न का सिद्धांत। संस्कृत भाषा एक जटिल एवं सूक्ष्म प्रक्रिया है, अतः इसमें सीखने के लिए प्रयास की आवश्यकता है। भाषा का अध्ययन तपश्चर्या है। इसके अध्ययन में श्रम, साधना एवं अत्यधिक अभ्यास की आवश्यकता है, तब जाकर कहीं भाषा पर अधिकार किया जा सकता है। एक एक वर्ण, शब्द एवं वाक्य को जानना पड़ता है और ठीक से जानना पड़ता है। यदि अच्छी समझ से एक शब्द को भी जानना है तो कड़े श्रम की आवश्यकता है। एक वर्ण या शब्द को ठीक से जान लेना कितना उपयोगी है या तो पतंजलि के इसी कथन से ज्ञात हो जाता है कि एको शब्द सम्यक ज्ञाता सुप्रयुक्ता। एको शब्द सम्यक ज्ञाता सुप्रयुक्ता स्वर्गे लोके च कामधुक भवति। आलंकारिक एवं कलात्मक भाषा प्रयत्न द्वारा सीखी जाती है। श्रुति लेख, वाक्य रचना, सस्वर पठन, अनुवाद जैसे कार्यों में प्रयत्न की आवश्यकता पड़ती है। भाषा की शुद्धता के लिए भी प्रयत्न करना पड़ता है। बाल्यावस्था के महत्व का सिद्धांत। भाषा शिक्षण की दृष्टि से शैशव एवं बाल्यावस्था का विशेष महत्व है। ज्यों ज्यों बालक बड़े होते जाते हैं उनकी भाषा सीखने की शक्ति मंद होती जाती है। प्रारंभिक अवस्था में यह शक्ति प्रचुर मात्रा में होती है, इस दृष्टि से बाल्यावस्था का विशेष महत्व है। संस्कृत की शिक्षा भारतीय विद्यालयों में द्वितीय भाषा के रूप में दी जाती है। इसका शिक्षण कहीं कहीं पर नवम कक्षा से प्रारंभ होता है। नवी कक्षा तक संस्कृत शिक्षण को स्थगित रखना ठीक नहीं है। चतुर्थ, पंचम अथवा कुछ विशेष परिस्थितियों में षष्ठ कक्षा में संस्कृत का शिक्षण अवश्य प्रारंभ कर दिया जाना चाहिए। शिक्षा के समय अध्यापक को बालक के वातावरण को महत्व देना चाहिए। शब्द भंडार बढ़ाते समय बालक के शरीर, घर, गांव आदि संबद्ध शब्द सिखाने चाहिए। बालक को महत्व देकर यदि शिक्षक अध्यापन करेगा तो बालक संस्कृत के अध्ययन में रुचि लेगा और वह भाषाई कौशलों पर अधिकार कर सकेगा। चयन एवं विभाजन का सिद्धांत। भाषा शिक्षण के अनेक उद्देश्य हैं। कुछ विद्वान संस्कृत में अभिव्यक्ति की क्षमता को संस्कृत शिक्षण का सर्वोच्च उद्देश्य स्वीकार करते हैं तो कुछ भावग्रहण को महत्व देना चाहते हैं। कुछ की दृष्टि से संस्कृत साहित्य का अध्ययन करके उसे मातृभाषा में जन शिक्षार्थ अनुदित करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सभी उद्देश्यों एवं सभी प्रकार के व्यवहार परिवर्तनों को एक साथ लेकर शिक्षा नहीं दी जा सकती। इनमें से किस उद्देश्य को लिया जाए, इस उद्देश्य की प्राप्ति कब की जाए, किसे पहले किया जाए और किसे बाद में, इन प्रश्नों का उत्तर आवश्यक हो, यही चयन का सिद्धांत है। यह चुनाव महत्वपूर्ण होता है। उद्देश्यों का चुनाव ही पर्याप्त नहीं है। उद्देश्यों का चयन कर लेने के बाद उक्त उद्देश्य के उपयुक्त पाठ्य सामग्री को विभाजित कर लेना चाहिए। यह विभाजन का सिद्धांत है। इस उद्देश्य के लिए कौन सी सामग्री उपयुक्त है, कौन से पाठ्य बिंदु हों, क्या क्रियाएं हों, पाठ को कितनी अनुवंतियों में बांटा जाए, इन प्रश्नों पर विचार करना बहुत आवश्यक है। अनुकरण एवं स्वयं संशोधन का सिद्धांत। बालक अनुकरणशील होता है। भाषा शिक्षा में इस प्रवृत्ति का उपयोगी होता है। वर्णों का उच्चारण, शब्द प्रयोग, वाक्य योजना अनुकरण से शीघ्र सीखे जाते हैं। शिक्षक की भाषा का अनुकरण प्रायः होता है, अतः शिक्षक को शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए। यदि बालक पहले अशुद्ध बोलता है तो वह अनुकरण के आधार पर स्वयं संशोधन कर लेता है और शुद्ध बोलने लगता है। ध्वनियों, शब्दों एवं वाक्यों की त्रुटियों को बालक स्वयं संशोधित करता है, अतः इस स्वयं संशोधन की प्रवृत्ति का लाभ उठाना चाहिए और भाषा सीखते समय छात्रों को अनुकरण एवं संशोधन के अवसर उपलब्ध होने चाहिए। मौखिक प्रवचन का सिद्धांत। मनुष्य पहले भाषा के मौखिक रूप को ही जानता है, अतः मौखिक कार्य द्वारा ही भाषा शिक्षण का प्रारंभ करना चाहिए। द्वितीय भाषा के रूप में तो मौखिक कार्य द्वारा भाषा सिखाना अत्यधिक मनोवैज्ञानिक है। इस सिद्धांत के शिक्षण में निम्न बातें ध्यान देने योग्य हैं। प्रथम, मनुष्य सर्वप्रथम श्रवणेन्द्रियाँ द्वारा ध्वनियों को सुनकर ग्रहण करता है, अतः मौखिक कार्य पर बल देना चाहिए। द्वितीय, श्रवण स्मृति द्वारा प्रायः नेत्र स्मृति की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली होती है। तृतीय, बालक भाषा के मौखिक रूप को ही प्रथमतः जानता है, अतः आरंभिक अवस्था में मौखिक कार्य में रूप में ऐसा कार्यक्रम प्रारंभ करना चाहिए जिससे कि बालक व्यवहारिक शब्दावली तथा मुहावरे सीख सके। चतुर्थ, मौखिक कार्य द्वारा छात्रों को सक्रिय रखा जाता है। वह निष्क्रिय श्रोता के समान सुनता ही नहीं, अपने भाव मौखिक रूप में अभिव्यक्त भी करता है। पंचम, मौखिक कार्य द्वारा उच्चारण में शुद्धता आती है। उच्चारण शुद्ध हो तो लिखित कार्य में अशुद्धियाँ नहीं होती। षष्ठ, मौखिक कार्य में अभ्यास द्वारा ही छात्र व्याकरण एवं अनुवाद के कठिन नियमों को रटने से बच जाता है तथा रोचक विधि से ज्ञान प्राप्त करता है। सप्तम, लिखित कार्य पर आधार, लिखित कार्य का आधार मौखिक अभिव्यक्ति है, अतः लिखित कार्य से पूर्व मौखिक कार्य करवाना चाहिए। इस दृष्टि से संस्कृत में प्रारंभिक अवस्था में वार्तालाप आदि पर ध्यान देना चाहिए। अष्टम, मौखिक कार्य द्वारा सीखा हुआ ज्ञान चिरस्थाई रहता है। शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत। इस सिद्धांत में शिक्षण सूत्र हैं। शिक्षण सूत्रों पर प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हर्बर्ट स्पेंसर ने भी बल दिया था। संस्कृत शिक्षण में निम्नलिखित सूत्र विशेष उपयोगी हैं। प्रथम, ज्ञानेंद्रियों द्वारा शिक्षण। द्वितीय, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तृतीय, पूर्ण से अंश की ओर। चतुर्थ, अनिश्चित से निश्चित की ओर। पंचम, सरल से कठिन की ओर। षष्ठ, ज्ञात से अज्ञात की ओर। सप्तम, मनोवैज्ञानिक से तर्क परक की ओर। अष्टम, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। नवम, विशेष से सामान्य की ओर। दशम, आगमन से निगमन की ओर। एकादश, प्रकृति का अनुसरण। इन सभी सूत्रों का तात्पर्य यह है कि छात्रों को मनोवैज्ञानिक शिक्षण सूत्रों को ध्यान में रखकर देना चाहिए। इससे छात्र सीखने में रुचि लेते हैं। पहले उन्हें ज्ञानेंद्रियों द्वारा मौखिक कार्य का अभ्यास करना चाहिए। ज्ञात विषय से अज्ञात की ओर बढ़ने से वह पूर्व ज्ञान का नवीन ज्ञान के साथ संबंध स्थापित कर नवीन अनुभव प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं। इन शिक्षण सूत्रों द्वारा संस्कृत भाषा को उचित अनुपात और क्रम में सिखाया जा सकता है। छात्रों को संस्कृत सीखने में स्वाभाविक रुचि उत्पन्न हो सकेगी और प्रभावशाली ढंग से संस्कृत भाषा को सीखकर अभ्यास और व्यवहार द्वारा दक्षता प्राप्त कर सकेंगे। संस्कृत सिखाने में उपर्युक्त सामान्य सिद्धांत बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं। छात्रों को व्यवहारिक ढंग से सीखने पर छात्र अभ्यास करने में रुचि लेते हैं। हमारे विद्यालयों में संस्कृत को अन्य भाषा के रूप में सिखाया जाता है, अतः मौखिक प्रवचन का सिद्धांत अत्यधिक लाभदायक सिद्ध होता है। इन सामान्य सिद्धांतों द्वारा सीखकर छात्र संस्कृत में दक्षता प्राप्त करते हैं। संस्कृत शिक्षण में प्राचीन प्रणाली सर्वथा त्याज्य नहीं। संस्कृत शिक्षण का यह भी आवश्यक सिद्धांत है कि आत्मसात करने की आवश्यकता है। प्रायः कुछ लोग कह बैठते हैं कि पाठशाला पद्धति हानिकर, अनुपयुक्त, अमनोवैज्ञानिक एवं सर्वथा त्याज्य है। इस विषय में कुछ कहने के पूर्व इससे परिचय प्राप्त करना आवश्यक है। पाठशाला पद्धति से परिचय प्राप्त करने के उपरांत पाठक स्वयं कुछ निष्कर्ष निकाल लेंगे। संस्कृत शिक्षण की प्राचीन पद्धतियों के रूप में हमारे समक्ष पाठशाला प्रणाली आती है। यह प्राचीन भारतीय शिक्षण पद्धति का प्रतिनिधित्व करती है, किंतु समय के साथ साथ इसके लाभदायक एवं उपयोगी गुणों का लोप होता गया। परिणाम स्वरूप नवीन पद्धतियों के रूप में हमारे समक्ष प्रत्यक्ष विधि तथा पाठ्यपुस्तक आदि प्रणालियां प्रचलित हुईं। प्राचीन पद्धति की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। प्रथम, भाषा पर पूर्णाधिकार। इस प्रणाली द्वारा छात्रों को समास चक्र, शब्द एवं धातु रूपावली, अमरकोश, लघु सिद्धांत कौमुदी, पाणिनीय, अष्टाध्यायी, महाभाष्य आदि का ज्ञान दिया जाता था। अमरकोश द्वारा शब्दों की व्याख्या होती थी। समास चक्र में भी सभी संज्ञाओं के रूप में होते थे। लघु सिद्धांत कौमुदी आदि व्याकरण ग्रंथों को पढ़ने पर छात्रों का संस्कृत भाषा पर पूर्णाधिकार हो जाता है। वह अपने भावों को संस्कृत में मौखिक एवं लिखित रूप में अभिव्यक्त कर सकते थे तथा दूसरों के विचार लिखित एवं मौखिक रूप या पठन द्वारा ग्रहण करते थे। द्वितीय, आध्यात्मिक वातावरण। छात्रों को संस्कृत में एवं आध्यात्मिक वातावरण प्राप्त होता था। छात्र व्याकरण के नियम एवं सूत्रों में रटते थे। उच्च कक्षाओं में इस प्रणाली द्वारा संस्कृत भाषा को प्रभावशाली ढंग से सीखा जा सकता था। न्याय, सांख्य, योग, वेदांत आदि के अध्ययन द्वारा उनमें आध्यात्मिक भावना का विकास होता था। तृतीय, स्मरण शक्ति में वृद्धि। छात्र लघु सिद्धांत, कौमुदी, अष्टाध्यायी आदि के नियम एवं सूत्रों को स्मरण करते थे। इस प्रकार से उनमें स्मरण शक्ति का विकास होता था। चतुर्थ, प्रतिभाशाली व्यक्ति उत्पन्न करने में सहायक। इस प्रणाली द्वारा ज्ञान को हृदयंगम कराया जाता था, जिसके लिए शास्त्रार्थ आदि विषयों का ज्ञान दिया जाता था। परिणाम स्वरूप अनेक प्रतिभाशाली व्यक्ति उत्पन्न हुए। इस प्रणाली द्वारा अध्ययन में रुचि भी उत्पन्न होती थी, तथापि यह प्रारंभिक अवस्था में उपयोगी नहीं थी, किंतु उच्च स्तर पर तो इससे संस्कृत भाषा उपयोगी ढंग से पढ़ाई जा सकती थी। पंचम, संस्कृत वातावरण द्वारा संस्कृत भाषा का ज्ञान। इस प्रणाली में अनुवाद तथा मातृभाषा का प्रयोग वर्जित था, अतः छात्रों को संस्कृत में वातावरण दिया जाता था। परिणाम स्वरूप छात्रों को संस्कृत सिखाने में सुगमता होती थी। इन विशेषताओं के होते हुए भी इनमें कई त्रुटियां थीं। प्राचीन पाठशाला पद्धति में कुछ लाभकारी गुणों का लोप हो गया। आज संस्कृत को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, अतः नवीन शिक्षण पद्धतियां प्रारंभ हुईं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि पाठशाला पद्धति व्यर्थ है और यह सर्वथा त्याज्य है। पाठशाला पद्धति के कुछ गुणों को आज भी अपनाने की आवश्यकता है।